तो यही भगवत गीता का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है जो अध्याय 16 में आते हैं, जिस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विशेषकर असुरी प्रवृत्ति के बारे में बोलते हैं। तो गीता में ज्यादा श्लोक दैवी संपद के बारे में वही बात है, क्योंकि अर्जुन तो सद व्यक्ति थे और श्री कृष्ण सबसे बड़ा सद व्यक्ति है, सदाम पति ही भक्तों के नाथ है। तो जब कृष्ण और अर्जुन बात करते हैं तो उसमें जरूर दैव संपद उसके बारे में बात करते, मतलब कैसे हम जो अभी इस भौतिक जगत में कैसे हम जैसे देव जैसे भगवान के गुणों से अलंकृत हो सकते हैं। लेकिन विशेषकर इस अध्याय में जिसका नाम दैवी और असुरी संपद, लेकिन जिसमें ज्यादा असुरी संपद का वर्णन है, तो विशेषकर इस अध्याय में वो भी व्यक्त है। तो असुरीगण कैसे आचरण करते हैं, कैसे मनोभाव है, कैसे प्रवृत्ति है, कैसे स्वभाव है, तो सभी गीता श्लोक हम समझ सकते हैं दो दृष्टि से। एक है वो सनातन वैदिक दर्शन में और एक है वो कुरुक्षेत्र में वो क्या स्थिति थी उसी प्रसंग में। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि असुरी गण ऐसे है और असुरित स्वभाव जो श्री कृष्ण इसी अध्याय में वर्णन करते हैं वो सदैव होते हैं जगत में, इसी जगत में। जैसे इसके पहले उस श्लोक है दो भूत सारे लोग दैव असुर एवं, कि इस जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक देव जैसे है और दूसरा असुर जैसे है। और इस गीता श्लोक है दो भूत सारे लोग दैव असुर एवं, दैव विस्तृत शब्द असुरम भारतमेशनो, श्री कृष्ण बोलते हैं कि दैवी संपद के बारे में इसके बारे में बहुत कुछ बोला। तो अभी असुरी संपद असुरी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ कहूंगा, किंतु यही श्लोक के पहले दो पद पद्म पुराण में भी है कि दो भूत सारे लोक इसमें दैव असुर बचा, कि उसके बाद विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर सत्य, तो देव कौन है और असुर कौन है। पद्म पुराण में इस वर्णन है कि जो विष्णु भक्त है वो देव है और जो विपरीत है जिनकी कुरुक्षेत्र अभी युद्ध क्षेत्र है। तो अर्जुन का संशय था कि क्या युद्ध करना अच्छा है या अच्छा नहीं, उचित है या अनुचित है। अर्जुन सोचे कि लड़ाई करना उचित नहीं है क्योंकि हमारे सामने दूसरे पक्ष में हमारे सब भाई स्वजन गुरु पितामह इत्यादि है और उनके वध करना और ऐसे व्यक्तियों से लड़ाई करना अनुचित। तो श्री कृष्ण इस अध्याय में असुरी गण का स्वभाव का विस्तृत वर्णन करते हैं, क्योंकि अर्जुन को बताते व्याख्या करते तो किस लिए अर्जुन का लड़ाई करना उचित है और लड़ाई नहीं करना अनुचित, क्योंकि दूसरे पक्ष में पितामह गुरुजन ब्राह्मणगण आत्मयस्वजन नायों ये सब थे, लेकिन दूसरे खोज तो असुरीगण के समर्थन, मतलब वो सब दुर्योधन के पक्ष में, और दुर्योधन ये सभी असुरीगण असुरी गुण संपन्न है, जैसे कि एक कहानी है महाभारत में, श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोले बाहर जाओ और खोज लो, और एक खराब आदमी मेरे पास लेके आओ, ढूंढ लो कोई भी खराब आदमी। तो युधिष्ठिर वापस आए बोलते तो कोई खराब आदमी नहीं देखा, क्योंकि युधिष्ठिर का स्वभाव ऐसे सबको जैसे आचार्य। फिर श्री कृष्ण जो योदन को भेजे तो एक आचार आदमी वापस लेके, तो दुर्योधन बाहर जाके ढूंढ रहा और वापस आया बोल रहे कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा। तो युधिष्ठिर का स्वभाव सत्य और दुर्योधन बिल्कुल असत्य, और वो असत्य स्वभाव या असुरित स्वभाव का वर्णन है इस विशेषकर इस अध्याय। तो असुरिक स्वभाव का प्रथम लक्षण इस श्लोक में है कि प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जना न विदुर असुरा, जो असुर है नहीं जानते हैं क्या करना और क्या नहीं करना। तो आज का जमाना आज का समाज में दिख यही गुण या लक्षण, गुण नहीं है ये लक्षण सर्वत्र देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि जैसे देव वैसे करो, यदि देव लगते तो वैसे करो, लेकिन वैदिक समाज में आर्य समाज में तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, तो सब शास्त्र के अनुसार निर्धारित है। और आज का समाज में प्रभुपाद देखते हैं तो आज तक तो सभी हिंदुओं मानव संहिता का आदेशों पालन करते हैं। तो प्रभुपाद 30 साल के पहले ये भगवद गीता लिखी, तो आज दूसरी कहानी है। तो हिंदुओं भी तो कुछ भी नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें फायदा होती है ना शौचम। तो वैदिक समाज में शोच अशोच पवित्रता अपवित्रता वो एक बहुत बड़ी बात है। तो लोग एक बात है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अस्पृश्य वैश्य के नीच और विशेषकर शूद्रों के नीच अस्पृश्य मान जाते, तो महात्मा गांधी बोले कोई अस्पृश्य नहीं है, तो क्यों अस्पृश्य मान जाता था, क्योंकि पवित्रता नहीं रखते थे वो सब जो मांस खाने वाले हैं, तो उससे अपवित्र होते हैं, और जो उच्च श्रेणी के लोग तो पूजा और जप ध्यान इत्यादि करते थे, तो पूजा करने में बिल्कुल स्वच्छता रखना चाहिए। तो ऐसे एक नियम है कि पुजारी तो दूसरे व्यक्तियों को स्पर्श नहीं करते। इसलिए एक कहानी है चैतन्य चरितमृत में, इसलिए वो सनातन गोस्वामी एक्चुअली तो परम भक्त, लेकिन कुछ दिनों में वो मुसलमान का शाखा में सेवक है। तो आज भारतीय लोग बहुत उत्साही है गल्फ जाने के लिए, दुबई अबू धाबी, तो मुसलमान की सेवा करने। तो मुसलमान क्यों नीच माना जाता था? तो अभी ऐसा हिंदू मुस्लिम दंगा चलते, लेकिन पहले ऐसा विचार कैसे था? क्योंकि मांस खाने वाले उसलिए। तो आज तो हिंदू सब मांस खाने वाले हैं, तो किस लिए भाई करते? तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो सब मांस करते हैं, और सब जो नहीं करना चाहिए तो करते हैं, तो भाई भाई होना चाहिए। तो सब प्रभृति चार नृति चार जनाना विदो राश भाई, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं पड़ते, तो किस लिए लड़ाई करते? लेकिन पूर्व काल में वो विचार था कि मुसलमान चंडाल इत्यादि तो नीच माना जाता था, क्योंकि वो विशेष बीफ खाने वाले थे गोमा में। तो सनातन गोस्वामी थोड़े दिन में वो मुसलमान के सेवन थे, तो उचना ब्राह्मण का कुल में थे, लेकिन हिंदू उस समय हिंदू समाज इतना खराब था कि यदि कोई मुसलमान की संगति की थी तो बहिष्कृत। तो सनातन एक बार सनातन गोस्वामी पुरी में रहते थे उस समय, चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में थे, वो ज्येष्ठ मास था, तो अभी वैशाख शुरू हो गया, उसके बाद ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ मास सबसे सब जानते सबसे गर्मी मास। तो दिन में दोपहर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बुलाया, तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान से कुछ दूर रहते थे, तो वहां से वो दो रास्ते वो जिसमें सनातन गोस्वामी का निवास स्थान और चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ मंदिर के निकट में रहते थे, तो आना का दो रास्ते, एक था वो साधारण रास्ता में मंदिर के निकट, और दूसरा चौपाटी में। तो जैसा महीना में दोपहर वो सब बालू कितना गर्म होते, रेती कितना गर्म होते, तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बुलाया, तो आधे घंटे वैसे आधे घंटे में तो चैतन्य महाप्रभु पूछे कौन सा रास्ते में है, और सनातन गोस्वामी बोले कि जब भी आता हूँ तो वो चौपाटी में आते, तो इतने गर्म है कैसे यार, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है मंदिर के बाजू में आना, क्योंकि वो सब पुजारी आते जाते रहते हैं, तो यदि किसी को स्पर्श करना है मेरे बहुत अपराध होगा। एक्चुअली सनातन गोस्वामी जो सब पुजारी से और बहुत बहुत ही पवित्र है, लेकिन ऐसे समाज में ऐसा नियम है कि जो सोसाइटी से बहिष्कृत है और पतित है तो पुजारी को स्पर्श नहीं कर सकते। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ऐसे परीक्षा, तो वो नियम था कि अस्पृश्य कैसे अस्पृश्य, क्योंकि प्रवृत्ति चार नवृत्ति चार जनान विदुर न शौचम अशौच, तो मांस खाने वाले शराब पीने वाले
तंबाकू खाने वाले उस समय तंबाकू नहीं था, वो बाद में आया। और परस्त्री का मन ये सब जो नहीं करने चाहिए करते, इसलिए अस्पृश्य अदृश्य अस्पृश्य अदृश्य ऐसे लोग उनका दर्शन भी नहीं करते, तो ऐसे नहीं हम तो। लेकिन आज का हम देखते हैं कि वो पवित्रता कैसे रखना, तो लोग तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत साधन है कि दीक्षित भक्तों में तो हाथ मुंह में ही रखते, अंगों काटते हैं, किसे इतना भूखे है उनसे मालूम नहीं, प्रसाद काटते हैं फिर भी हाथ काटते हैं, फिर माला करते हैं और भागवत पाठ करते हैं, तो इतना अपवित्र है। तो हाथ और अंगों यदि मुंह में रखते हैं तो बिल्कुल अपवित्र होते, तो हाथ केवल खाना का समय या धन मंजन का समय मुंह में रखना चाहिए, दूसरा समय नहीं है। तो इसलिए नियम है कि केवल ब्राह्मणों पूजा करते, क्योंकि ब्राह्मणों ये सब नियम पालन करते, और ब्राह्मण तो दूसरे लोगों को स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग तो ये सब नियम पालन नहीं करते, तो हाथ मुंह में रखते कान में। और ऐसा है आजकल देखते हैं बहुत लोग पैसा करते हैं वो उसके बाद हाथ भी नहीं देते, ये आज का जमाना है, सब प्रजात है, सब ऋषियों की पुत्र। तो सदाई करने का वो बहुत मतलब, जब शादी का मैच होते है तो देखने है तो कौन सा गोत्र में है, गोत्रम का जो ऐसे ही सब गोत्र है नहीं, तो जो खास हिंदू है सब ऋषि के पुत्र। लेकिन आज का ऋषि जैसे आचरण तो कुछ भी नहीं जानते, पूरी संस्कृति भ्रष्ट हो गया है, न शौचम न पीछा आचारो न सत्यम तेषु विद्यते, आचार आचरण क्या आचरण होना चाहिए, तो सब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब शास्त्र से समझना चाहिए। तो शास्त्र में दूसरे दूसरे विभाग है और बहुत नहीं, बहुत नहीं, विशेषकर 20 प्रधान ऋषि श्रुति से वो सब नियम निकला और स्मृति शास्त्र रचना किया, जिसमें मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध है। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य पराशर ये तीनों सबसे प्रसिद्ध है, और ये सभी 20 धर्म शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है। मनु संगीत जिसमें विधि विधान है, मानव समाज और मानव समाज में सभ्यता रखने के लिए। तो आजकल सब विपरीत हो गया है, क्योंकि आजकल आसुरिक समाज चलते है। एक साधारण उदाहरण है कि लोग सोचते हैं कि अटैच्ड बाथरूम बहुत बढ़िया है, लेकिन सभी धर्म शास्त्र में निर्देश है कैसे मलमूत्र त्याग करने, तो गांव के बाहर जाना चाहिए और कोई नदी कुआ वट वृक्ष ये सबों से दूर से ये सब पैसा मऊ त्याग ये सब करना चाहिए। तो नहीं है तो किचन के बाजू में ये सब करना, लेकिन हम सोचते हैं ये आधुनिक प्रगति तो न शौचम न चाचारो क्या आचरण ठीक है तो नहीं जानते इस तत्पर्य में श्री प्रभुपाद नारी की स्वतंत्रता में कुछ मंतव्य करते हैं एक्चुअली इस श्लोक में नारी की स्वतंत्रता में कोई निर्देश नहीं है लेकिन प्रभुपाद उदाहरण स्वरूप में कि आजकल के लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं कि आज के ही तथाकथित प्रगत व्यक्तियों सबसे कि नारी की स्वतंत्रता अच्छा है और समाज का कल्याण के लिए अच्छा है तो मालूम है लगने है कि न स्त्रियों स्वतंत्रता अर्हति स्त्रियों की स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए रक्षित होना चाहिए तो बचपन में पिताजी से और युवावस्था पति से और बुढ़ापन में पुत्रों से रक्षित होना चाहिए तो यदि रक्षा होती है तो स्वतंत्रता नहीं सकती रक्षा अर्थात कुछ सीमा रखना चाहिए तो नारियों की रक्षित होने के लिए तो अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए तो जब यदि अकेला बाहर जाते हैं घर के बाहर तो रक्षा के अंदर तो प्रश्न नहीं है रक्षा मतलब पुरुष व्यक्तियों रक्षा करते हैं तो उनके साथ रखना चाहिए लेकिन धीरे धीरे ये सब बदल हो गया है तो आधुनिक लोग सोचते हैं कि नारियों को स्वतंत्रता देना चाहिए क्यों जैसे गुलाम घर में रखना चाहिए तो सही है कि हिंदू समाज में ऐसे कुछ जो कुछ अनुचित आचरण था स्त्रियों के प्रति लेकिन उसलिए मानव जो भगवान का अवतार है मानव का निर्देश उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए यदि हम अच्छी तरह मानव का आदेशों को पालन नहीं करते हैं तो अच्छी तरह पालन करना चाहिए उसको वर्जन नहीं करना चाहिए तो लोग सोचते हैं कि नारी की स्वतंत्रता अच्छा है तो एक उदाहरण देते हैं कुछ दिन के पहले मैं हैदराबाद में था और एक महिला तो युवक पुत्र के साथ मेरे पास है युवक पुत्र मतलब उसका उम्र 21-22 और वो ब्राह्मण के आया वो मतलब दक्षिण भारत स्मार्ट तमिल वो आया बहुत तो वो लड़का को बोला कि तो आप सोचिए थोड़ी दिन के बाद विवाहित होगा तो कैसे पत्नी को व्यवहार करना तो आजकल लोग सोचते हैं कि नारियों तो ऑफिस में या स्कूल में काम लगाना अच्छा है लेकिन एक्चुअली थोड़ी दिन के पहले यदि वो किसी की स्त्री बहा में काम करते थे वो थोड़ा वंश के लिए जैसे डाक था वो शराम की बात ऐसे थे ने? कि वो पति तो खुद फैमिली का आमदनी नहीं ले सकते तो शराम की बात क्योंकि पति का कर्तव्य है पैसा लाना और पत्नी का कर्तव्य घर में सब मैनेज करना, घर की रानी। तो मैं ऐसा उसको बोला कि अच्छा हो, आप काम करो और घर वाली घर में रखो, घर वाली आजकल जो घर में है नहीं ऑफिस वाले। तो वो बोला तो स्वामी जी मैं आपको सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार है कि स्त्रियों को ऐसा नियंत्रण करना अच्छा नहीं है, they should lead their own life, तो खुद का जीवन होना चाहिए। तो मैंने सोचा खुद का जीवन तो ये तो किसलिए विवाह करना है, यदि खुद का जीवन होते हैं तो दंपति एकत्रित होते कैसे, जैसे एकत्रित होते हैं, तो यदि वो उसका खुद का जीवन हो और मेरा खुद का जीवन है तो विवाह का क्या जरूरत है, मेरा खुद का जीवन है और उसका खुद का जीवन है, और उसकी इच्छा जैसे हो तो वैसे जो भी करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, तो कैसे परिवार, कैसे परिवार, तो परिवार नहीं होते, केवल एक व्यवस्था है कि नर और नारी एक साथ रहते और आहार में जो भाई मैथुन हम सकते सब खाना पीना सोना आश्रय मतलब मकान और मैथुन, ये एक व्यवस्था है उसमें। तो देखते हैं कि पक्षियों का समाज में, पशुओं का समाज में तो कुत्ता कुत्ती, कपोता कपोती, मायूर मायूरी एक साथ रहते हैं, लेकिन विवाह संस्कार नहीं होते। तो विवाह संस्कार का क्या अर्थ है, अर्थ है कि चाहे भी हिंदू समाज में या मुसलमान समाज में या क्रिश्चियन समाज में, विवाह तो एक धार्मिक प्रथा है। तो नहीं है कि हम जैसे पक्षियों पशुओं एक साथ रखते हैं आहार में, केवल आहार निद्रा भय मैथुन अनुसार के लिए नहीं है, तो हम एक साथ में रहते हैं भगवान की सेवा में, तो वो धारणा है, तो वो विवाह का अर्थ है। इसलिए स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा जाते हैं, तो यदि धर्म नहीं होती है तो धर्म पत्नी नहीं होगी तो कई बार हो जाए तो कुत्ते कुत्ती एक साथ रखते, तो वैसे ही व्यवस्था है। और जैसे एक्चुअली कुत्ता कुत्ती एक साथ नहीं रखते, कुत्ती तो कुत्ते तो कुत्ती को इस्तेमाल करते हैं फिर उसको क्या करते, तो ऐसे भी आजकल देखते हैं कि एक मनुष्य तो कुछ दिन तो पत्नी तथाकथित पत्नी को इस्तेमाल करते थे उसको भगा करते, आई लव यू तुमको प्यार किया था, तो अभी प्यार नहीं है, अभी तुमका कोई जरूरत नहीं, जाओ लीड योर ओन लाइफ, तुमका खुद का जीवन हो तो मेरा खुद का जीवन भी है, तो तुम अलग रहो और मैं, मेरा खुद का जीवन है मैं भी अलग हूं, और तुम पहले थोड़ा ब्यूटीफुल थे अभी नहीं है, तो अभी दूसरी बात यह है नरक पचा में तो तुम जाओ और मैं फिर शादी करूंगी। तो यही शादी नहीं है, यही पशुवत जीवन है। लेकिन आज ऐसे होते हैं क्योंकि नारी की स्वतंत्रता है, जैसे ये चाहो वैसे ही करो। तो नारी हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा थी यही लड़का से विवाह करना, तो अभी दूसरी इच्छा है, अभी उसको मैं इतना लाइक नहीं करता हूं, तो दूसरे आदमी को ज्यादा लाइक करता हूं, तो उसको छोड़ के वो स्वयं मुझको बोलते हैं तुम खुद का जीवन वैसे करो। तो ठीक है मैं करता हूं। इसलिए प्रभुपाद कथा में लिखते हैं कि तो आज का पारिवारिक जीवन जैसे स्वप्न है, और मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं
समाज। लेकिन भगवान की दृष्टि भगवान का विचार है, यही आधुनिक और यह आसुरिक समय, आधुनिक आसुरिक मतलब वो समय भी आसुरिक लोग थे, नहीं तो इसलिए श्री कृष्ण जी सब बहुत दुर्योधन अश्वत्थामा जरासंध जो सब आसुरिक गुणों से प्रवृत्त थे। लेकिन आज का पूरा समाज आसुरिक भावना से घटित है, तो इसलिए ठीक ठाक मिलना बहुत ही मुश्किल है। लोग तो नहीं जानते, लोग सबसे मानसा दिखा रहे समाज रचने के लिए वो सभी आदेश जो है वो सोचते वो सब पालन करना अच्छा नहीं है। हम अभी उदार है, हम मानव से सब कुछ अच्छा जानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है समाज में, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। वो लोग तो कर करते टैक्सेस देते हैं सरकार को, लेकिन उससे क्या होते हैं, वैदिक समाज में राजा को लोगों का आय का एक भाग जन्म कर सकते, लेकिन राजा काल का कार्य था प्रजाओं का रक्षा करना। तो यदि राजा समाज नहीं था प्रजाओं का रक्षा करने के लिए, तो उसका कोई अधिकार नहीं था राजा होने। लेकिन आज का सभी सरकार, सरकार में कोई एजेंसी नहीं है, सरकार है तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, किसी का जिम्मेदार है। तो यदि हम जाते हैं वो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस बोलते हैं मेरे की प्रॉब्लम है, तो पता है दूसरा ऑफिस है, तो दूसरा ऑफिस जाते हैं बोलते हैं दूसरा ऑफिस है, किसी का जिम्मेदार नहीं है, फिर भी टैक्सेस लगते हैं। एक्चुअली कोई अधिकार नहीं है टैक्सेस लेना, यदि वो प्रजाओं का सभी प्रयोजन पूर्ण करते पूर्ण नहीं करते तो कोई अधिकार नहीं है टैक्सेस लेना। तो ऐसा है कि राजा क्षत्रिय क्षत्रिय अर्थात जो प्रजाओं का उपक्षक अर्थात चकली से उधार करते, लेकिन आज कोई क्षत्रिय नहीं है। प्रक्ष थी भक्ति अंतिम नृत्य राजा निरोधिना, आज के राजाओं नृत्य मतलब नृत्य का क्या मतलब मांस करने वाले, तो जैसे सब पॉलिटिशियन मांस करने वाले शराब पीने वाले देश जमाने वाले, लेकिन लोगों का फायदा वो करते लेकिन प्रजा से पक्षी चाहिए, तो प्रजा को जैसे खाते हैं लेकिन राजा के रूप में, तो प्रजाओं की सुरक्षा नहीं होते, तो खुद का घर में भी कोई सुरक्षा नहीं, कोई भी समय से लोग आ सकते डाकू और सबको बात करके सबको लूट कर सकते और कैसे शिक्षा देते। एक्चुअली शास्त्रीय का कर्तव्य है समाज में शांति रखना, जैसे ही सिविल हार्मोन होगा कि ब्राह्मणों तो दूसरे लोगों को भगवत तत्व ज्ञान शिक्षा देंगे, लेकिन आज देखते हैं कि सरकार का नियम है कि स्कूल में भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं हो सकती, तो सब एकदम विपरीत है। विष्णु भक्त जाएगा और सूरज तर्क की कार्य जो समाज के लिए अनुकूल है तो आज सब विपरीत होते हैं। और भाई आज हम उजाड़ हैं, तो भगवान जो करना चाहते हैं तो हम सब बनाव करते हैं। लेकिन ऐसे उजाड़ नहीं होना चाहिए। यदि लोग तो मांस खाना चाहते हैं तो रास्ते में ये सब खाना मना करना चाहिए। यदि कोई मांस खाने वाले हैं तो खुद का डर नहीं कर सकते, पब्लिक में ऐसा नहीं होना चाहिए। और वायदिक नियम के अनुसार कि अमावस्य सभी लोग रात को काली के सामने काली को एक मानिस बाइस या क्या बोलते बकरा उसको काटना है, गाय नहीं। और एक मंत्र कहना है कि आदि मैं तुमको काटता हूँ और आदि जीवन में तुम मुझको काटो। तो ऐसे वैदिक समाज में मांस खाना तो बिल्कुल निषेध नहीं है, लेकिन कुछ शर्त है और उसे समय लोग नहीं करते। लेकिन आज का साका तो स्लोगन क्या बोलते हैं, फैट खाने खटाओ खाने तो साका खुद बनाते हैं। सोचते तो अच्छा बनने से मैंने सुना कि कई भाषाओं में भारत तो दुनिया में एक नंबर देश होगा बीफ एक्सपोर्ट में। हरे कृष्ण गौ माता की जय। तो आज लोग सोचते गौ हत्या की जाए, गौ माता की जय है, गौ हत्या की जाए, तो हत्या होना चाहिए ऐसे से। तो यही आसुरिक समाज है, तो इसलिए एक ही उपाय है, यही कृष्ण भक्ति अनुशीलन होता है, कोई दूसरा उपाय नहीं। आज कहते हैं वो सभी गुरु भी साधु भक्त करके आसुर है, क्योंकि वास्तविक मार खुद नहीं जानते, पालन नहीं करते, तो कैसे तथाकथित गुरु हों, कैसे तथाकथित शिष्य हों, सब शिक्षा देंगे तो स्वयं नहीं जानते। यही और एक और आसुरिक लक्षण है कि साधु भक्त संख्य आसुर बोलते हैं कि सब भगवान है, विशेषकर मैं भगवान हूं, तो ये सभी असुर है। तो इसलिए हम इस कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और जोर से बोलते हैं कृष्ण तू भगवान स्वयं, कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण ही भगवान है और भगवान का नाम लेना चाहिए। ये आज के लोग मंद सुमंद गति और मंद भाग्य युद्ध जूता, लोगों की भाग्य नहीं होते हैं, बुद्धि मंद होते हैं, विपरीत मंद बुद्धि है। छायानाथाय सभ्या कलावस्मी वेदन, लोगों की आयु जीवन बहुत छोटी होती है और दुर्भाग्य है, लोगों का दुर्भाग्य होते हैं और मन बहुत विचलित होते, सदैव लोगों के मन में उपद्रव होते। तो इसलिए एक ही रास्ता है इस कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु का हरियर नाम हरियर नाम हरे नाम ये केवल खलौना सेवना सेवना सेवक सेवन हरिनाम सब्जे। और उसके साथ भगवद गीता यथारूप श्रीमद भागवत सुनना चाहिए, जैसे कई भक्त है जो बालक करते हैं लेकिन वो प्रवचन नहीं सुनते, क्या सोचते मुझे जानते मैं भी सुनने का कोई जरूर नहीं, लेकिन ऐसे है क्या है कि वो बालक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन भगवान का उपदेश में कोई रुचि नहीं रखते, तो इसलिए भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और पूरा मन में पूरा भूल धारणा होते, तो इसलिए हरे कृष्ण बोलते है फिर भी सोचते है कि साई बाबा भगवान है या आश्राम अच्छा साधु है या ये सब वो नहीं जानते, तो विपिन चाहते हैं विपिन चाहते जनान विदुरा सेवा सुंदर कितने बालक करते हैं, लेकिन वो बालक जो हरे कृष्ण बोलते हैं वो पूरा अपराध युक्त होते हैं, क्योंकि नाम अपराध कैसे होते हैं साधु निंदा एक भू धारणा की विष्णु और दूसरे देवता देवताओं एक ही समान है, तो जब शास्त्र नहीं सुनते हैं तो कैसे ज्ञान मिलेगा कि विष्णु सर्वोपरि है और गणेश शिव दुर्गा सब भगवान की जान जाती है, गुरु अवज्ञा गुरु का आदेश पालन नहीं करते वो नाम अपराध है, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं कब नहीं सुनते गुरु जो बहुत है तो नहीं सुनते, जैसे कि मैं अभी भवचान देता हूँ मेरा काफी दीक्षित भक्त है बड़ौदा में, कितना है यहाँ पे तो ज्यादा नहीं है, अधिकांश तो इधर उधर मैदान में टाइम पास करते हैं बताकर करते हैं, लेकिन प्रवचन सुनना का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और गुरु महाराज बोलते हैं लेकिन प्रवचन सुनने का कोई रुचि नहीं है, फिर ऐसा नाम अपराध है कि वैदिक अनुष्ठानों जैसे ओम चार होम सब तीर्थ यात्रा ये सब काल खंडीय प्रथा और नाम कीर्तन एक ही है तो वो भी नाम अपराध है, लेकिन देखते हैं कि वही बस मतलब कीर्तन को आकृष्ट है वो एक गुण है, लेकिन जब सिटी में दूसरा जगह में दूसरा संस तो प्रचार का तो आश्रम है यज्ञ आयोजित करते हैं वहां पर भी जाते हैं, और जब कोई डोंगी कथाकार आता है ओ राम लीला बोलते हैं जाते हैं तो नहीं जानते, तो शुद्ध वैष्णव दर्शन और शुद्ध वैष्णव जीवन जाए और जानने की कोई इच्छा नहीं है, सोचते कि मैं माला करता हूं मैं भक्त हूं मेरे स्वप्न में कृष्ण खुद आते हैं और मुझको बात बोलते तो एक्चुअली जो भक्ति करते हैं लेकिन ऐसे सीरियसली नहीं करते, तो भक्ति और असुर प्रवृत्ति मिक्स करके ऐसे चलते तो ऐसी वो भक्ति नहीं हो सकती, इससे ये समझना चाहिए कि ये आचार्य गौर वैष्णव आचार्य परंपरा के अलावा तो सब दूसरी बात जो है वो सब असुर है, सब दूसरा वैष्णव संप्रदाय है वैष्णव आचार्य परंपरा के बाहर सब भाषाओं सब आचरण सब कुछ जो है असुरित, चाहे भी तथा साथी गुरु बोलते वेजिटेरियन हो तो असुर भी है, एक व्यक्ति मुझ
कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझसे पूछ रही थी, तो साईं बाबा अच्छा नहीं है क्यों? तो जो साईं बाबा के भक्तों ने वो बोलते भक्त नहीं, भक्त नहीं बोलते, साईं बाबा के भक्त नहीं है, वो रक्षा से और उनके पिता का भी भक्त वही भी रक्षा से। तो बोलते कि मैं बहुत लोग का पहचान है जो पहले मांस खाते थे, शरद पीते थे, तो साईं बाबा के पास जाकर तो वो सब अभी छोड़ दे, तो साईं बाबा कैसे कराते? तो मैं उसको बोला कि तो मांस नहीं खाना और शराब नहीं पीना और साथ ही साईं बाबा फॉलो करना, से मांस खाना और शराब पीना अच्छा है और उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि यदि मांस खाना और शराब पीना है तो वो भी बड़ा पाप है जोड़ो और उससे नारा भोग होते हैं। लेकिन यदि साईं बाबा भगवान मांगना है तो वो उससे और बहुत 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 बड़ा पाप है। लेकिन जो प्रभुति चार अभिति चार जनान विदुरास तो नहीं जानते क्या चाहिए क्या मिलता है, तो इसलिए इस कृष्ण कॉन्शियसनेस इसका कृष्ण भावना में साइंस हम केवल शास्त्र के अनुसार उपदेश देते हैं और शास्त्र में है तो ही हम पालन करते हैं और शास्त्र के अलावा सभी बात जो है हम नहीं मानते। और दूसरे है जो बोलते हैं हम शास्त्र मानते हैं लेकिन कृष्ण की श्री कृष्ण परमेश्वर वो ही नहीं मानते, तो वो शास्त्र का नाम नहीं शास्त्र पालन नहीं करते, क्योंकि यदि हम शास्त्रीय है तो अवश्य ही श्री कृष्ण स्वयं भगवान है वो ही मानना चाहिए, तो ये सब भला मानना चाहिए। साधारण दिया आ रहा है सर, हमें आशा है कि क्लास में कुछ कृष्ण लीला बोलना होगा और कुछ जोक बोलना है, कुछ मजा जारी है और लोग आ जाएंगे, तो आज तो ऐसा प्रवचन नहीं था, लेकिन यही भगवत गीता है तो यही सुनना चाहिए और जो भगवत गीता का प्रचार है तो लोगों का मनोरंजन के लिए बात होना चाहिए नहीं चाहिए, मनोरंजन के लिए टीवी है। तो शास्त्र सुनना चाहिए जैसे कि हमारा जीवन में लाभ होता है, नहीं है कि कुछ मनोरंजन हो, मनोरंजन में हम सुनते कृष्णा कैसे मकान चेकर हम भी वैसे बात बोलते, लेकिन साधारण लोग के लिए ये बात बोलना और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग प्रवृत्ति चार प्रवृत्ति नहीं जानते क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, शास्त्र की वाणी क्या है, शास्त्र जो भगवान का आदेश है, शास्त्र में कैसे जीवन घटाना चाहिए, तो उसका कोई धारणा नहीं है लोगों को, तो इसलिए कोई धारणा शास्त्र में कोई धारणा नहीं है, इसलिए पूरा भू धारणा होती है और इसलिए समाज में इतना उपद्रव होते हैं, सभी लोगों का मन में उपद्रव होते हैं, क्योंकि जैसे कि ये श्लोक में दूसरे श्लोक में भगवान कहेंगे न शास्त्र में बात होती न सूखा न परम गति, यदि हम शास्त्र को नहीं मानते तो सुख शांति और परम गति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। तो सभी व्यक्ति का मन में बहुत उपद्रव है और इसलिए पूरे समाज में उपद्रव होते हैं, तो इसलिए एक ही सुधार भगवत गीते यथा रूप प्रचार करना और भगवत गीता के अनुसार कृष्ण भक्ति करने से यदि हम सोचते हैं कि मैं भक्ति करूंगा मैं जानता हूँ कैसे भक्ति करें मैं माला करता हूँ कीर्तन करता हूँ तो वो ही भक्ति है नहीं शास्त्र के अनुसार भक्ति करने चाहिए भक्ति में कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन कीर्तन के पहले क्या है श्रवणम कीर्तनम कैसे कीर्तन करना चाहिए निरअपराध रूप से करना चाहिए कैसे अपराध से मुक्त हो सके यदि हमें मालूम है क्या आराधना है और क्या अपराध है अपराध क्या है आराधना के विपरीत अपराध होते तो यदि हमें नहीं मालूम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो हम अपराध करेंगे फिर भक्ति किसी भी नहीं मिलेगी फिर सही श्रवण करने चाहिए और यही सभी श्रवण करने चाहिए यदि मैं सबको बता दूंगा आप सब महाभागवत श्रेष्ठ भक्तों तो वह कल उचित ही होंगे क्योंकि आप किसी स्तर में नहीं है आप सब कनिष्ठ स्तर में है तो इसलिए समझना चाहिए तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार और यदि हम नहीं जानते हैं तो हम अच्छी तरह भक्ति नहीं कर पाएंगे तो पहले समझना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार हरे कृष्ण तो इसके बारे में कई प्रश्न है कई प्रश्न नहीं है सब सहमत है हरे श्रीमद् भागवत यथा रूप